ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷாவாசிய உபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஜெகதீஷ் புரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
இஸ்கா அர்த் ஹுவா கி சார் குணா உபாசனா கரோ தோ ஏக் தத்வ ஜான் கி யோக்யதா ஆயேகி. सब में चार चार गुना अंतर है, आप देख लीजिए. 4000 मंत्र ज्ञान के हैं तो उससे चौगुणी उपासना करनी पड़ेगी ज्ञान के लिए. 16000 मंत्रों से साधना करनी होगी और 16000 मंत्रों से उपासना की योग्यता के लिए उसके चार गुणे कर्मकांड करके चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा. 80000 मंत्र, 16 का चौगुना 80000 होगा. ये 80 होगा कि नहीं? तो इस प्रकार से आप देखिए, माने हमारे जो अंतकरण में मल दोष हैं उसकी निवृत्ति करने के लिए पहले कर्म बताए गए हैं. 80000 मंत्र अंतकरण में जो चांचल्य दोष होता है उसके निवारण के लिए 16000 मंत्र उपासना के दिए गए हैं. जब मल और विक्षेप दोनों ही दोषों की निवृत्ति इस कर्म और उपासना के माध्यम से हो जाती है तब तृतीय श्रेणी आती है ज्ञान कांड की. इस ज्ञान कांड के जो 4000 मंत्र हैं, जो अविद्या का आवरण है, अज्ञान का आवरण है, उस आवरण को भंग करने में काम आएंगे ये 4000 मंत्र. इस प्रकार से जो ये उपनिषद विद्या है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है. हालांकि जीवन में पूरा का पूरा वेद बहुत उपयोगी है क्योंकि कर्म कांड के बिना चित्त की शुद्धि नहीं है और उपासना के बिना चित्त की स्थिरता नहीं है. और जिस चित्त की शुद्धि न हो, जिस चित्त की स्थिरता न हो, जब भी देखो स्वरूप का साक्षात्कार होगा तो किसमें होगा? जैसे हम लोग आईने में अपने शक्ल देखते हैं तो आईना ही नहीं होगा तो अपनी शक्ल कैसे दिखाई पड़ेगी? अरे भाई, सामने आईना नहीं, चलो पानी है तो पानी भरा हुआ उसमें भी व्यक्ति अपनी शक्ल को देख सकता है. लेकिन पानी भी यदि साफ नहीं है, पानी भी यदि स्थिर नहीं है तो क्या उसमें अपने शक्ल देख सकते हैं? जब कभी भी आत्म साक्षात्कार होगा ना तो आत्म साक्षात्कार भी भीतर ही में होगा, अनुभूति भी भीतर में ही होगी. जिस मन जिस बुद्धि के द्वारा हम चिंतन करते हैं वहीं पर आत्मा का साक्षात्कार होना है. आपने कठश्रुति में सुना होगा, दृश्यते तुग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः. हमारा जो अंतकरण है, हमारा मन है, बुद्धि है, इसको इतना सूक्ष्म कर लिया जाए, इतना सूक्ष्म कर लिया जाए इसमें कोई दूसरी चीज रह ही न सके. फिल्टर करते जाओ, कोई भी कचरा है उसको हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ और मन बिल्कुल उस शुद्ध निर्मल जल की तरह हो जाए या एक स्वच्छ आईने की तरह हो जाए, तब आप देखिए उसके सामने अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाएगी. इसलिए चित्त की उस स्थिति को पाने के लिए कर्म उपासना एक आवश्यक साधन है. और जिन्होंने कर्म और उपासना को किया है अब उनका आवरण भंग करने के लिए, अविद्या को नाश करने के लिए उपनिषद के मंत्रों का चिंतन होना बहुत जरूरी है. इस प्रकार से हमारी संपूर्ण वेद राशि, अब ये जो चारों वेदों के 1,00,000 मंत्रों की वेद राशि है उसमें भी प्राय वेद राशि को फिर दो भाग में विभक्त किया गया है. मनुष्यों ने विचार करके कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो उपनिषद के केवल मंत्र भाग में आते हैं जिसको संगीता भाग बोलते हैं, और कुछ अन्य ऐसे मंत्र हैं जो ब्राह्मण भाग के अंतर्गत आते हैं. दो भाग प्रमुख उसमें है. यद्यपि आरण्य को उपनिषद भाग को करके और भेद कर देते हैं किंतु दो भाग प्रमुख रूप से है, ये मंत्र भाग और संगीता भाग. अब उसमें भी वेद के अंदर जो मंत्र भाग माना गया है उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है. ब्राह्मण भाग के बजाय जो संगीता भाग या मंत्र भाग एक ही अर्थ में आता है, संगीता कहो या मंत्र कहो, ये संगीता और मंत्र भाग वेद का बहुत प्रामाणिक और महत्वपूर्ण भाग है. हालांकि ब्राह्मण भाग को लेकर के मनुष्यों में बड़ा विवाद भी रहा. कई लोग तो कहते हैं जो वेद के ब्राह्मण भाग के मंत्र होते हैं वो मूल वेद है ही नहीं, ऐसी धारणा भी होती है। आर्य समाज आदि ने ऐसा ही माना, लेकिन जो मंत्र भाग है वो सबके लिए प्रामाणिक है, उसमें किसी को संदेह नहीं होता है कि ये प्रामाणिक है कि नहीं है। अब मंत्र भाग की यदि कोई उपनिषद मिल जाए तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, और उन मंत्र भाग की उपनिषदों में ये जो हमारी उपनिषद जिसके ऊपर हम लोग विचार करने जा रहे हैं ईशावास्य उपनिषद, ये अत्यंत महत्व की इसलिए भी है कि ये मंत्र भाग माने संगीता भाग की उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद की का सीधा सीधा डायरेक्ट 39वां अध्याय है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह संगीता भाग की उपनिषद है। वैसे उपनिषदों की संख्या बहुत मानी जाती है, वेद की जो शाखा क्रम होता है उन शाखाओं में ऐसी मान्यता है कि चारों वेदों के मिलाकर के 1180 शाखाएं होती है, और जितनी शाखा होती है प्रत्येक शाखा के अंत में एक एक उपनिषद मानी जाती है। तो प्रत्येक शाखा के अंत में एक ब्रह्म विद्या एक उपनिषद आती है, इसका मतलब 1180 शाखाएं हैं, तो उपनिषद में 1180 ही होगी, उसमें भी 1000 उपनिषद तो सामवेद की ही मानी जाती है। अब इतनी जो ये सारी उपनिषदें होती हैं 1180 शाखाएं, यद्यपि उनकी सारी उपनिषदें आज उपलब्ध नहीं है, इस काल प्रवाह में कितने सारी उपनिषद विद्याएं लुप्त हुई हैं, परंतु आज भी करीब करीब 100-150 उपनिषदें मिल जाती हैं, और उनमें भी जितने 100-150 उपनिषद प्राप्त होती हैं टोटल प्रामाणिक है यह कहना बड़ा कठिन काम है। कितनी उपनिषदें प्रामाणिक हैं, कितने प्रसिक्त हैं, ऊपर से थोपी हुई हैं, ये निर्णय करना बहुत कठिन है। कई लोगों ने ऐसा भी किया है कि इस उपनिषद विद्या का बहुत महत्व होने के कारण अपने द्वारा लिखी गई पुस्तकों को भी उपनिषद संज्ञा दे दी। मैंने सुना था महाराज श्री जी साधना सदन के संस्थापक गुरुदेव सुनाया करते थे कि अकबर के टाइम पर किसी एक व्यक्ति ने उपनिषद लिखी, जिस उपनिषद का नाम रखा अल्लो उपनिषद, उस उपनिषद का नाम रखा अल्लो उपनिषद। उपनिषद बड़ी प्रसिद्ध विद्या थी, महत्वपूर्ण विद्या थी, तो श्रेष्ठ नाम रखने से पीछे कौन रहेंगे। तो अब बताइए अल्लो उपनिषद कोई शाखा की उपनिषद नहीं हो सकती, लेकिन लोगों ने महत्व का प्रसंग होने के कारण उसके साथ में उपनिषद संज्ञा जोड़ दी, तो ऐसे मान लेते हैं। अब 150 उपनिषदों में भी कितनी प्रामाणिक यह कह पाना बहुत कठिन है, किंतु जिन उपनिषदों को हमारे आचार्यों ने प्रमाणित किया है वो बड़ी महत्व की मानी जाएगी, और आचार्यों ने जो प्रमाणित किया उसमें 10-11 उपनिषद तो अत्यंत ही प्रामाणिक हैं। आदि जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य महाराज ने जिनके ऊपर भाष्य लिखा है उन उपनिषदों की प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं है। उसके अलावा कई ऐसी उपनिषद भी है जिन पर संपूर्णतया आचार्य ने भाष्य न भी लिखा हो, लेकिन अपने भाष्य प्रकरणों में तत्तद मंत्रों में जहां आवश्यकता लगी उन उपनिषदों के मंत्रों का उदाहरण दिया है, उनको प्रमाणित किया है, उस प्रसंग को उठा करके लिखा है। जैसे उदाहरण के लिए कौशित की उपनिषद होती है, अब कौशित की उपनिषद पर आचार्य ने कहीं भाष्य नहीं लिखा है, लेकिन भाष्य प्रकरणों में जहां आवश्यकता पड़ी वहां के मंत्र उठा करके आचार्य ने डाले। तो जिन उपनिषदों पर भाष्य लिखा है आचार्य ने और जिन भाष्य के मध्य अन्य उपनिषदों के उदाहरण दिए गए हैं उनकी प्रामाणिकता में तो कोई संदेह नहीं हो सकता है, ये बहुत महत्व की उपनिषदें होती है। और उनमें भी उदाहरण की बजाय जिन पर भाष्य लिखना आचार्य ने बड़ा महत्व का कार्य समझा, अनिवार्य समझा, वो उपनिषदें और भी कितनी प्रामाणिक होगी। ऐसी उपनिषदें हैं वो 10 उपनिषद हैं, ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐत्रेय तैतरीय छांदोग्य और वृद्धारण्यक उपनिषद। ये 10 उपनिषद है जिन पर आचार्य शंकर ने भाष्य लिखा है, यद्यपि 11वें उपनिषद भी में भी भाष्य मिलता है, वह है श्वेताश्वतर उपनिषद, किंतु मनुष्यों में इसके प्रति थोड़ा संदेह होता है कि ये जो आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाराज हुए हैं उनका शायद ही भाष्य हो, उसको इतना महत्व नहीं देते। कारण आप जानते हैं जब लेखक बदल जाता है तो उस लेखनी का जो विषय है उसकी शैली भाषा बदल जाती है। दस उपनिषद की जो शैली है उसकी और ग्यारहवां उपनिषद जो श्वेता सूत्र उपनिषद है उसकी शैली को आप लोग भी पढ़ोगे तो साफ साफ मालूम पड़ेगा कि इनके लेखक कोई अलग है। आचार्य शंकर ने जहां तक उपनिषद भाष्यों में श्रुति और स्मृति का उदाहरण दिया है, पुराणों का उदाहरण नहीं दिया है। आप देखिएगा गीता आदि स्मृतियों को लिया है लेकिन पुराणों का प्रसंग आचार्य ने कहीं लिया नहीं है। व्यास महाराज ने जो पुराण लिखे हैं लेकिन ग्यारहवें उपनिषद का यदि भाष्य देखें आप तो विष्णु पुराण आदि के कितने सारे प्रमाण दिए हैं उसके अंतर्गत। इसलिए लोग संदेह करते हैं कि कोई जो प्रवर्ती शंकराचार्य हुए हैं बाद में आए हैं उन शंकराचार्यों के द्वारा शायद लिखी गई है लेकिन वो भी तदगद्दी में बैठे हुए हैं तो उसको शंकराचार्य भाष्य बोल सकते हैं लेकिन मूल जो प्रमाणिक उपनिषदें हैं वो दस उपनिषदें हैं। अब दस उपनिषदों में भी जैसा कि मैं आपको निवेदन कर रहा था कि मंत्र भाग की उपनिषद और ब्राह्मण भाग की उपनिषद, इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है मंत्र भाग की उपनिषद जिसको आचार्य ने सबसे पहले लिया है। अपने भाष्य क्रम में जहां स्वाध्याय क्रम चलता है वहां पर भी ईशावास्य उपनिषद के क्रम से ही पाठ शुरू होता है। ईशावास्य के बाद में केन आता है, परिकट आता है, ये क्रम चलता है। फिर प्रश्न मुंडक मांडुक्य का क्रम आगे बढ़ेगा। इसलिए महत्वपूर्ण उपनिषद है ये ईशावास्य उपनिषद। प्रत्येक उपनिषद का जो नामकरण हुआ है उस नामकरण की दृष्टि से देखते हैं अधिकांश ऐसी उपनिषदें हैं जो उसके प्रथम शब्द को लेकर के उसके से नाम कर दिया जाता है अथवा कुछ ऐसी उपनिषदें हैं जो उनके प्रसंग को लेकर के किस प्रसंग से उसका आरंभ हुआ है उसको लेकर के उसका नामकरण संस्कार हो जाता है। कुछ ऐसी उपनिषदें हैं जो कलेवर आदि की दृष्टि से उसका नाम रखा जाता है। अब आप देखिए दसवीं उपनिषद आती है बृहदारण्यक उपनिषद। सचमुच में जैसा उसका नाम है वैसा ही उपनिषद का कलेवर है। बृहत का अर्थ क्या होता है? बड़ा। और आरण्य का मतलब क्या हुआ? अरण्य भव। आरण्यक अरण्य बोलते हैं बहुत बड़े वन को, जंगल को। तो जंगल कितना बड़ा विस्तृत होता है और जंगल में कोई पश्च आए तो बाबा उसका निकलना भी आसान नहीं है, और छोर दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद में फंसे हो कि नहीं? कभी स्वाध्याय क्रम में नहीं चला? कितने साल में निकले होंगे? ये सोचा होगा कि जिंदगी पूरी कर देंगे महात्मा लोग इसके अंदर, इतना बड़ा कलेवर है। तो आकार की दृष्टि से, कलेवर की दृष्टि से भी नाम हो सकता है। कई उपनिषद ऐसे भी आती हैं जो लाक्षणिक होती है। मुंडको उपनिषद आती है वो लाक्षणिक है, प्रश्नो उपनिषद आती है वो लाक्षणिक है, जहां प्रश्नों के द्वारा ही उसका प्रारंभ हो रहा है तो लाक्षणिक है। या कहीं प्रथम शब्द को लेकर के देखो केन उपनिषद आया। केन उपनिषद में जो प्रश्न खड़ा किया, केन शितम पतति प्रेषितम मन, केन प्राण प्रथम प्रेति युक्त है, केन शब्द से ही उस उपनिषद का आरंभ होने के कारण नाम ही रख दिया केनो उपनिषद। ठीक इसी प्रकार से जिस उपनिषद के ऊपर हम लोग विचार मंथन करने जा रहे हैं वो उपनिषद यह है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद में भी ईशा शब्द के द्वारा ही इस उपनिषद का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इस उपनिषद का नाम रखा गया है ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य शब्द के द्वारा ही इसका प्रारंभ हो रहा है, कारण यही है इसमें ईशावास्य उपनिषद नाम देने का। कलेवर की दृष्टि से देखते हैं तो उपनिषद कोई बहुत बड़ी नहीं है, सभी श्रोताओं के लिए कंठस्थ करना भी सुलभ है, बहुत आसान है। केवल इसमें 18 मंत्र है। देखो जब भगवद गीता के 12वां अध्याय के 20 श्लोक याद किए जा सकते हैं, जब 15वां अध्याय के 20 श्लोक कंठस्थ किए जा सकते हैं, तो ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्रों को कंठस्थ करना मुझे नहीं लगता कि बड़ा कोई कठिन काम हो, बल्कि दो मंत्र कम ही है। आसानी से इस उपनिषद को कंठस्थ किया जा सकता है। और ऐसी उपनिषद है, आप ताजुब करेंगे जब इसके अंदर हम घुस करके देखेंगे तो हमारा जितना बड़ा बड़ा जो ये स्मृति शास्त्र है, इतिहास ग्रंथ है, उन सब का मूलभूत है तो इस आवासीय उपनिषद है। महाभारत इससे बड़ा कोई स्मृति ग्रंथ कोई है, इतिहास ग्रंथ कोई है? जितने मंत्र वेद में माने गए हैं उतने के उतने श्लोक महाभारत के अंदर व्यास जी ने डाले। 1,00,000 श्लोकों का जो महाभारत लिखा है, ये समझ लो कि वो पूरा का पूरा महाभारत ग्रंथ है, ईशावास्य उपनिषद के भीतर से निकल करके बाहर आया है। आप देखिएगा उसका परम मूल है ईशावास्य उपनिषद। जैसे महाभारत में दो पक्ष काम कर रहे हैं, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष, इस उपनिषद के अंदर भी आप देखोगे दो पक्ष प्रमुख रूप से लिया गया है। पांडव पक्ष ज्ञान मंत्रों का प्रतीक है और कौरव पक्ष कर्म मंत्रों का प्रतीक है। इस प्रकार से दोनों पक्ष लिए गए हैं। दोनों सेनाओं में प्रमुख प्रमुख जो योद्धा और व्यक्ति गिने जाते थे उनमें 7 व्यक्ति प्रमुख रूप से पांडव पक्ष में गिने जाते हैं, 11 व्यक्ति कौरव पक्ष में माने जाते हैं। और इस उपनिषद के अंदर भी मैं जब प्रसंग चलेंगे तब आपको निवेदन करूंगा। यहां पर भी आप देखिएगा 7 प्रमुख मंत्र कर्म के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, और 11 जो मंत्र आए हैं वो यहां कर्म के प्रतीक आएंगे। माने दोनों पक्ष लेकर के चले हैं ईशावास्य उपनिषद में, और उन्हीं का विस्तार देखना है तो पूरा महाभारत पढ़िएगा। अब महाभारत में उलझने की बजाय इतना अच्छा होगा कि केवल इन 18 मंत्रों में सारे महाभारत में जो लिखा गया है उसके परम मूल को हम जान लें। अब पत्ते पत्ते पर चलने की बजाय कितना अच्छा कि मूल को पकड़ लें। तो ये उपनिषद है मूलभूत उपनिषद, कितनी सारी इसकी विशेषताएं हैं। कलेवर की दृष्टि से बहुत छोटी उपनिषद है, महत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंत्र भाग की उपनिषद है, और आधार की दृष्टि से देखो तो महाभारत ग्रंथ जैसे ग्रंथ कया बीजभूत उपनिषद है, आधारभूत उपनिषद है, ऐसे महत्वपूर्ण उपनिषद को विचार करने के लिए हम लोग यहां पर प्रवृत्त हुए हैं। एक चीज और देखनी है हमें यहां पर कि किसी भी वेद विद्या को जब प्रारंभ करते हैं तो उसके प्रारंभ में मंगलाचरण का विधान आया है। आप कोई भी ग्रंथ उठाइए, महापुरुषों ने सर्वप्रथम मंगलाचरण किए हैं। इस उपनिषद में भी मंगलाचरण हुआ है, क्योंकि वेद उपनिषद विद्या को प्राप्त करने के लिए मंगलाचरण की अत्यंत आवश्यकता है। शांत चित्त होकर के उसको श्रवण करना पड़ता है। आचार्य शंकर ने भाष्य में एक जगह बात लिखी है, संभवतः कठभाष्य में लिखा होगा कि शांतो दांतो उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनेव आत्मानं पश्येत, ऐसा उपनिषद भाष्य ने कार में लिखा है कि साधक को शांत दांत उपरत तितिक्षु समाहित हो करके इस ब्रह्म विद्या का श्रवण करना चाहिए तो हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां शांत दांत उपरत आदि से युक्त हो, उसके लिए मंगलाचरण की बड़ी आवश्यकता होती है। मंगलाचरण से हमारे चित्त को स्थिर और शांत करके और फिर उसका विचार चिंतन हम लोग करते हैं। यही कारण है कि पहले मंगलाचरण के द्वारा माने शांति पाठ के द्वारा इस उपनिषद का प्रारंभ होता है। इस उपनिषद का जो शांति पाठ है मंगलाचरण रूप से जो उपस्थित होता है वो ऐसा मंत्र है, यदि जानकारी और प्रसिद्धि की दृष्टि से कहें तो सड़क छाप मंत्र है। हाँ, प्राय प्राय जितने भी श्रोता है सबको याद होगा ओम पूर्णमदः पूर्णमेदम्, क्योंकि आगे और पीछे इसी मंत्र को बोला जाता है। लेकिन अर्थ की दृष्टि से देखो तो ऐसा अद्भुत मंत्र है महाराज, बड़े बड़े चिंतकों को भी चौंकाने देने वाला मंत्र है। क्या अद्भुत इस मंत्र का अर्थ है, जिस मंत्र का अर्थ आज तो मैं आपके सामने निवेदन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी ब्रह्मचारी जी का एक भजन आपको सुनना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे प्रियात्मा ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य जी का भजन सुनना चाहते हैं। वहां जेवीनगर में भी देखा कि कई लोग इस दृष्टि से आते हैं कि ब्रह्मचारी जी का भजन सुनेंगे, गत वर्ष यहां भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। ईश्वर ने कंठ में सरस्वती दी है तो प्रतिदिन एक भजन इनके द्वारा आप लोग श्रवण करेंगे और ठीक टाइम से समय से अपना प्रवचन कर्म संपन्न हो, इसके लिए जो मंगलाचरण का अद्भुत जो रूप है उसको एक मंगलाचरण का उच्चारण कर ले और कल से फिर इस कर्म को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।